चौथा, प्लेटो ने काव्य की सार्थकता नैतिक शैक्षिक मूल्यों में मानी थी, अरस्तु ने आनंद की महत्ता स्थापित की थी। होरेस ने दोनों के बीच समन्वय का मार्ग अपनाकर काव्य के प्रयोजन के अंतर्गत शिक्षा और आनंद दोनों का समाहार कर दिया। पांचवा, होरेस इसके लिए श्रेय के अधिकारी हैं कि उन्होंने काव्यालोचना की स्वायत्तता कायम रखते हुए शुद्ध आलोचना का स्वरूप प्रस्तुत किया और आलोचना को किसी दूसरे अनुशासन का अंग या आश्रित नहीं बनाया। छठा, जॉर्ज सेंटबरी के अनुसार आर्स पोएटिका का सबसे बड़ा महत्व यह है कि उसमें रोमी युग के साहित्य की आलोचनात्मक धारणा की स्पष्ट झांकी मिलती है। छठा, अनुकरण शब्द का प्रयोग होरेस ने भी किया है किंतु अरस्तु ने से सर्वथा भिन्न अर्थ है। होरेस के अनुसार अनुकरण का अर्थ है प्राचीन कवियों के आदर्श और मान्यताओं का अनुकरण। एक शब्द में कहे तो प्राचीनों का अनुकरण ही वास्तविक अनुकरण है। प्रकृति दर्शन आदि के झमेले में न पड़कर होरेस ने अनुकरण का सीधा सुबोध अर्थ ग्रहण किया। आठवां, होरेस के मन में औचित्य काव्य रचना का प्रधान गुण है। विषय, भाव, भाषा, छंद, सर्वत्र वे औचित्य के अग्राही हैं। औचित्य शास्त्रवाद का एक प्रकार से अभिन्न सहचर है। कालांतर में उसी के से रूढ़ियों का जन्म होता है। नाटक का आकार मर्यादित होना चाहिए, यह ठीक है, क्योंकि अति विस्तार से वह ऊब पैदा कर देगा और अति संक्षेप से उसका प्रभाव आहत होगा। किंतु जब होरेस यह कहते हैं कि अंक 5 ही हो, न अधिक न कम, तो यह रूढ़ी होगी, प्रेक्षकों का ध्यान बट न जाए। इसके लिए मंच पर 3 पात्रों का होना संगत है, मगर 4 पात्र कभी हो ही नहीं सकते, यह रूढ़ ही है। आवश्यकता पड़ने पर 3 से अधिक पात्रों के भी मंच पर आने की में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए औचित्य रूढ़ि में परिणत न हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। होरेस का औचित्य बहुशः रूढ़ि में परिणत हो गया है। नौवा, नए रचनाकारों के लिए होरेस के सिद्धांत निश्चय ही बड़े उपादेय और सहायक हैं। उनका अनुगमन कर कोई सहज की ही स्खलन से बच सकता है। इस दृष्टि से उनके सिद्धांतों की प्रासंगिकता अक्षुण कही जाएगी। होरेस की लोकप्रियता और मान्यता का यह बहुत बड़ा कारण रहा है। दसवां, यद्यपि होरेस यूनानी साहित्य के प्रबल प्रशंसक तथा समर्थक हैं, आदर्श के रूप में यूनानी साहित्य को सदा सामने रखने की सिफारिश भी करते हैं, किंतु राष्ट्रीय साहित्य की कीमत पर नहीं। उनका कहना है कि कला और शिल्प में यूनान को आदर्श मानो पर अपनी भाषा से अधिक मौलिक साहित्य रच कर राष्ट्रीय भंडार को भरो। यदि यूनानी की मौलिकता से परहेज करते तो हमें उनके जैसा अभिजात साहित्य कहाँ से मिलता। होरेस लैटिन साहित्य में यूनानी साहित्य की श्री और समृद्धि लाना चाहते हैं। ग्यारहवा, काव्य निर्माण के लिए प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास में प्रतिभा का महत्व मानते हुए भी होरेस व्युत्पत्ति और अभ्यास को अधिक उपादेय समझते हैं। श्रम का उनकी दृष्टि में बहुत महत्व है। बारहवा, होरेस की प्रकृति विनोदी और व्यंग प्रिय थी, यह उनके लेखन के अंदाज से जाहिर है। अतः आलोचना के सैद्धांतिक उहापोह या गहराइयों में जाने की उनमें प्रवृत्ति नहीं दिखती। वे कवि थे, अतः अपने अनुभव के आधार पर काव्य रचना के लिए उपयोगी सुझाव दे सकते थे। आर्स पोएटिका में उन्होंने यही कहा भी उनमें कहीं भी क्लिष्टता या अस्पष्टता नहीं है। उनकी चुटिली संक्षिप्त सूत्रोपम युक्तियां समझने में सुगम और याद रखने में आसान है, पर इसके साथ ही उनमें एक बड़ा दोष यह है कि उनके सिद्धांत वचन व्यंग, विनोदपूर्ण विस्तार और वाकजाल में छिप जाते हैं। उनका मनमौजीपन कभी कभी उबाऊ और हास्यास्पद बन जाता है। आर्स पोएटिका में यह प्रवृत्ति आरंभ से अंत तक वर्तमान है, जो उनकी अभिव्यंजना में अपेक्षित सफाई सुथराई है। और कथन भंगी भी आकर्षक है। 13वां, सेंट सबरी का कहना है कि कुछ संदर्भों को छोड़कर होरेस में न तो सप्रमाणता है, न उमंग है, न भाव। कुल मिलाकर आर्स पोएटिका अत्यंत मध्यम कोटि की रचना है। विलियम विम्सेट ने अपने इतिहास में सेंट सबरी से असहमति व्यक्त की है। हमारी धारणा है कि सेंट सबरी के विचार अति रंजित हैं। होरेस पर गंभीरता, मौलिकता और विवेचकता की कमी का आरोप सही हो सकता है, किंतु उनमें न तो उमंग या भाव की कमी है और न सप्राणता की है। हमारा तो यह ख्याल है कि उमंग या भाव के अतिरेक के कारण ही उनमें गंभीरता नहीं आ पाई है। उमंग भाव प्रवणता या जिंदा दिली के में होरेस की समता करने वाले आलोचक कम ही मिलेंगे। 14वां, रोमी आलोचक में होरेस का स्थान निस्संदेह सर्वोच्च है। शास्त्रवादी आलोचकों में अरस्तु के बाद उन्हीं का नाम लिया जाता है, किंतु दोनों में तात्विक अंतर है। अरस्तु अपनी आभा से चमकते हैं, होरेस अरस्तु की आभा के प्रतिफलन से। अरस्तु मौलिक उद्भावना के में समर्थक हैं, होरेस उद्भावित मार्ग पर आत्मविश्वास से चल सकते हैं और दूसरों को भी सहारा दे सकते हैं। उनकी सबसे उल्लेख आलोचनात्मक भूमिका यह है कि उनके प्रभाव से गौथिकवाद का अतिरेक नियंत्रित रहा, रोमांटिक कल्पना का अतिशय अनुशासित रहा। पुनर्जागरण युगीन आलोचना को प्रेरणा और दिशा मिली। इंग्लैंड में बेन जॉनसन समय 1573 से 1637 और फ्रांस में बाइलोस समय 1636 से 1711 ईस्वी जैसे उत्कृष्ट आलोचक होरेस के अनुगामी रहे। बाइलो के लार पोएटिका और अलेक्जेंडर पोप समय 1688 से 1744 के ऐसे आन क्रिटिसिज्म में शुद्धता, व्यवस्था, औचित्य, व्युत्पत्ति आदि पर जो बल है, उसके पीछे होरेस का ही प्रभाव है। अरस्तु को छोड़ दे तो 18वीं शताब्दी तक यूरोपीय आलोचना पर होरेस का एकाधिपत्य रहा। शास्त्रवादी आलोचना के प्रतिष्ठापकों और आद्य आचार्यों में उनका स्थान स्थिर तथा सुरक्षित है। होरेस का अध्याय समाप्त। विलियम वर्ड्सवर्थ समय 1770 से 1850। विलियम वर्ड्सवर्थ मूलतः कवि थे। समालोचना की न तो उनमें रुचि थी, न प्रवृत्ति और न क्षमता। प्राकृतिक परिवेश में पलने के कारण विकसित भी उनका सौंदर्य बोध ही हुआ, जो कवित्व के अधिक अनुकूल था। समालोचक के जो अपेक्षित गुण हैं, वे वर्ड्सवर्थ में नहीं थे। फिर भी परिस्थिति की बाध्यता से उन्हें समालोचक बनना पड़ा। समालोचक के रूप में वर्ड्सवर्थ का मूल्यांकन करते समय इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है। वर्ड्सवर्थ ने 20 वर्ष की उम्र 1790 ईस्वी में फ्रांस, इटली और आल्प्स पर्वत की पैदल यात्रा की। इस यात्रा का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आल्प्स की प्राकृतिक सुषमा ने उनकी सौंदर्य भावना को उद्दीप्त किया और फ्रांस की क्रांति ने विचार को। फ्रांस की क्रांति कुछ ही दिन पहले 1789 ईस्वी में हुई थी। स्वभावतः उसकी गर्मी अभी वातावरण में मौजूद थी। यात्रा के दौरान वर्ड्सवर्थ फ्रांस में एक वर्ष रहे। इस प्रवास ने भावना और विचार दोनों में उनको एक नया परिप्रेक्ष्य ही नहीं दिया, बल्कि उनके भावी कवित्व की आधार भूमि भी प्रस्तुत की। उनकी समालोचना पर भी इस यात्रा का प्रभाव परिलक्षित होता है। 1895 में कोलरिज ने वर्ड्सवर्थ की मुलाकात हुई, जो बाद में मित्रता और आत्मीयता में परिणत हो गई। दोनों जीवन के नहीं काव्य जगत के भी सहपथिक बने। पारस्परिक विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप दोनों ने कुछ सामान्य मान्यताओं को सामने रख कर काव्य रचना की योजना बनाई। लिरिक बैल्ड्स के नाम से उन कविताओं का प्रथम संस्करण 1798 में प्रकाशित हुआ। इस संस्करण की संक्षिप्त भूमिका एडवर्ड शीर्षक से वर्ड्सवर्थ ने लिखी। लिरिक बेल्स के प्रकाशन ने तत्कालीन काव्य जगत में हलचल मचा दी, क्योंकि इसमें प्रचलित काव्य प्रस्थापनों से अलग हटकर नवीन मान्यताओं तथा सरणियों की स्थापना का उपक्रम था। फलतः इस संग्रह के काव्य विषय और काव्य भाषा दोनों पर अभिजात्यवादी नियो क्लासिकल आलोचकों ने निर्मम आक्रमण किया। 1800 में जब भूमिका सन्निविष्ट की, जिसमें लिरिकल बैल पर आलोचकों द्वारा किए गए आक्षेपों के उत्तर थे, यह भूमिका कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक तो इसमें काव्य और काव्य भाषा पर वर्ड्सवर्थ जैसे उत्कृष्ट कवि की व्यक्तिगत मान्यताओं का प्रतिपादन है। दूसरे स्वच्छंदतावादी आंदोलन का यह घोषणा पत्र भी माना जाता है। इस भूमिका का एक ऐतिहासिक महत्व यह भी है कि इसने 17वीं से 18वीं शताब्दी की काव्य संबंधी नव अभिजात्यवादी मान्यताओं को उच्छिन्न प्राय कर दिया। 1800 ईस्वी वाली यह भूमिका ही प्रीफेस टू लिरिकल बैल्ड्स के नाम से अंग्रेजी के आलोचना साहित्य में प्रसिद्ध है। एक परिशिष्ट के साथ यह भूमिका 1802 में 2 ईस्वी के तृतीय संस्करण में भी आई। ग्रंथ का चतुर्थ संस्करण 1815 में प्रकाशित हुआ। इस तरह लिरिकल बैल्ड्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए, 1798 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1802 ईस्वी, 1815 ईस्वी में। चूंकि वर्ड्सवर्थ और कोलरिज समान विचारों और मान्यताओं को लेकर काव्य रचना में प्रवृत्त हुए थे, अतः काव्य के विषय और भाषा के संबंध में भी उनमें बहुत कुछ विचार साम्य था। और वर्ड्सवर्थ ने जो भूमिका लिखी उसमें कोलरिज के विचार भी समाविष्ट थे। वस्तुतः यह भूमिका कोलरिज को ही लिखनी थी, किंतु कोलरिज के जीवन और कार्य पद्धति में व्यवस्था की बड़ी कमी थी, जिसके फलस्वरूप वे भूमिका न लिख सके। लाचार कोलरिज यह भूमिका वर्ड्सवर्थ को ही लिखनी पड़ी। आगे चलकर भूमिका में अभिव्यक्त विचारों से कोलरिज सहमत नहीं रह पाए और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 ईस्वी में बड़े जोरदार ढंग से वर्ड्सवर्थ के विचारों का खंडन किया। समसामयिक आलोचकों के आक्रमण और कोलरिज जैसे सहयोगी के खंडन के बावजूद वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस का अंग्रेजी आलोचना के इतिहास में विशिष्ट महत्व है, क्योंकि रोमांटिक आंदोलन का सूत्रपात इसी से होता है। इस भूमिका में वर्ड्सवर्थ ने पहले काव्य विषय और काव्य भाषा पर विचार किया था, किंतु तृतीय संस्करण 1802 में उन्होंने कवि किसे कहते हैं इसकी भी चर्चा की। भूमिका के प्रत्येक संस्करण में संशोधन परिवर्तन का क्रम चलता रहा। वर्ड्सवर्थ की भूमिका में दार्शनिक या वैचारिक गंभीरता भले ही न हो, किंतु ताजगी है और एक नई दिशा का, एक नई लीक का संकेत है। वर्ड्सवर्थ की विवेचन पद्धति की अवगति के लिए एक नए अनुच्छेद का प्रायः अविकल अनुवाद प्रस्तुत है। सामान्य रूप में विषय का विवेचन करते हुए मैं पूछना चाहता हूँ कि कवि शब्द का अर्थ क्या है, कवि किसे कहते हैं, वह किससे अपनी बात कहता है और उससे कैसी भाषा की अपेक्षा की जाती है। वह मनुष्य है जो मनुष्यों से बात कहता है। यह सच है कि वह ऐसा मनुष्य है जिसमें साधारण मनुष्य की अपेक्षा अधिक जीवंत संवेदनशीलता, उमंग और कोमलता होती है, जिसे मानव प्रकृति का समधिक ज्ञान होता है, जिसकी आत्मा व्यापक होती है, जो अपने ही भावों और इच्छाओं से प्रसन्न होता है और दूसरों की अपेक्षा आत्मगत जीवन चेतना में अधिक रस लेता है, जो अपने भावों और इच्छाओं के समान ही विश्व के व्यापारों में अभिव्यक्त भावों और इच्छाओं पर विचार कर उल्लसित होता है और जहां वह उन्हें नहीं पाता, वहां भी उनके सर्जन के लिए अभ्यासवश प्रेरित होता है। इन विशेषताओं के साथ उसमें यह मनोवृत्ति भी जुड़ी होती है कि अन्य मनुष्यों की अपेक्षा अविद्यमान वस्तुओं से भी वह इस तरह प्रभावित हो मानो वे विद्यमान हैं। उसमें अपने भीतर ऐसे भावों के उन्मेष की भी योग्यता होती है जो वास्तविक घटनाओं द्वारा जनित भावों से पर्याप्त भिन्न होते हुए भी उन भावों के बहुत समान होते हैं, खासकर सामान्य सहानुभूति के उन अंशों में जो प्रीतिकर और रुचिकर हैं। इन कारणों से और अभ्यास से वह अपने भीतर ऐसी शक्ति और तत्परता विकसित किए होता है कि वह जो कुछ सोचता है और अनुभव करता है उसे बखूबी व्यक्त कर देता है। विशेषता वैसे विचारों और अनुभवों को जो बिना तात्कालिक बाह्य उत्तेजना के उसकी अपनी रुचि या मन की संरचना से उत्पन्न होते हैं। इस संदर्भ को देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि आलोचक की अभिव्यंजना में जो कसावट होनी चाहिए उसका उसमें अभाव है। बातें प्रायः ठीक ही हैं, किंतु उनके कहने का ढंग शिथिल, अंशतः जटिल और अव्यवस्थित भी है। उद्धृत संदर्भ के कथ्य निम्नलिखित हैं: कवि की संवेदनशीलता और कोमलता साधारण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक होती है। मानव और मानवेतर प्रकृति का उसे अधिक ज्ञान होता है और साधारण मनुष्यों की तुलना में उसकी चेतना वस्तुओं के निरीक्षण एवं ग्रहण में अधिक समर्थ होता है। वह अपनी भावनाओं और इच्छाओं से स्वयं तो आह्लादित होता ही है, दूसरों को भी आह्लादित करने में सक्षम होता है। उसकी कल्पना इतनी सजग होती है कि प्रत्यक्ष से नहीं बल्कि परोक्ष से भी वह प्रत्यक्षवत प्रभावित होता है। वास्तविक घटनाओं के समान अवास्तविक घटनाओं की भी वह ऐसी सजीव कल्पना कर सकता है कि वे वास्तविक जैसी प्रतीत होती हैं। उपर्युक्त नैसर्गिक गुणों के अतिरिक्त निरंतर अभ्यास से उसमें ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह अपने विचारों और अनुभवों को किसी तात्कालिक बाह्य उत्तेजना के भी जब चाहे अपने भीतर उत्पन्न कर सकता है, साथ ही अभिव्यक्त भी कर सकता है। काव्य पर विचार करते समय वर्डस्वर्थ ने काव्य की परिभाषा, विषय वस्तु, प्रयोजन और भाषा पर विचार किया है। इनमें काव्य भाषा पर विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वर्डस्वर्थ के अनुसार काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। यह परिभाषा स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का प्रतिफलन है। इसके साथ कतिपय अन्य अवांतर बातों की भी चर्चा वर्डस्वर्थ ने की है जिनसे काव्य की परिभाषा पर उतना प्रकाश नहीं पड़ा जितना काव्य सर्जन की प्रक्रिया पर। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि वे मूलतः कवि हैं और कवि की हैसियत से काव्य प्रक्रिया पर कुछ कहना उनके लिए आसान भी है और संगत भी। वर्डस्वर्थ ने इस प्रसंग में जो कहा है उसके विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं: पहला, काव्य प्रक्रिया का प्रथम चरण है प्रबल भावों का अनायास उच्छलन या उत्प्रवाह, ओवरफ्लो। दूसरा, द्वितीय चरण है प्रशांत मनोदशा में उन भावों का अनुस्मरण। यह अनुस्मरण केवल स्मरण नहीं होता बल्कि भावन भी होता है, जिसके फलस्वरूप प्रशांतता धीरे धीरे तिरोहित हो जाती है और पुनः वैसी ही भाव दीप्त मनोदशा उत्पन्न होती है जैसे प्रारंभ में हुई थी। तीसरा, इसी भाव दीप्त मनोदशा में रचना का प्रायः आरंभ होता है और ऐसी ही मनोदशा में उसका क्रम चलता रहता है। चौथा, भाव चाहे जिन कारणों से उत्पन्न हो, जिस प्रकार के हो और जिस मात्रा में हो, वे नानाविध आनंदों से संवलित होते हैं और उनका वर्णन करने में जो स्वेच्छया संपन्न होता है वह आनंदानुभूति की स्थिति में रहता है। काव्य को भावों का उच्छलन कहकर वर्डस्वर्थ ने जहाँ विधि रूप में कवि की दृष्टि से रचना प्रक्रिया की आरंभिक स्थिति को प्रकट किया है, वह वहाँ निषेध रूप में नव अभिजात्यवादी सिद्धांत का खंडन भी किया है। यह नव अभिजात्यवादी के अनुसार काव्य रचना के लिए तर्क और नियम का अनुसरण आवश्यक है। स्वच्छंदतावाद ने इनके स्थान पर सहज स्फूर्त भाव को प्रतिष्ठित किया। वर्डस्वर्थ जिसके समर्थक पक्षधर थे, काव्य प्रक्रिया के संदर्भ में वर्डस्वर्थ ने आनंद को पर्याप्त रेखांकित किया। उनका कहना है कि काव्य के उपादान भूत भावों में भी आनंद रहता है और उनका वर्णन करने में कवि को भी आनंद प्राप्त होता है। भावक के आनंद का निर्देश तो लगभग सभी आलोचक ने किया है, किंतु कवि स्रष्टा के आनंद का निर्देश कुछ ही आलोचकों ने किया है। वर्डस्वर्थ उनमें अन्यतम है। इस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास का स्वांत सुखाय अनायास स्मरण हो आता है। भावों के अनायास या सहज उच्छलन की बात कहकर वर्डस्वर्थ ने शिल्प पक्ष का खंडन किया हो, ऐसा नहीं है। अनायास या सहजता का अर्थ कलाहीनता नहीं है। जब तक शिल्प का योग नहीं होगा, तब तक कोई भी उक्ति काव्य की संज्ञा नहीं धारण कर सकती। स्वयं वर्डस्वर्थ भी अपनी कविता के परिष्करण परिमार्जन में नितांत सचेत थे। उनका कहना था कि प्रथम स्फूर्त विचार एवं शब्द की तुलना में परवर्ती चिंतन से परिष्कृत विचार एवं शब्द उत्कृष्टतर होते हैं। वर्डस्वर्थ के समय में काव्य और विज्ञान के सापेक्ष महत्व का विवाद चल रहा था। कवि होने के नाते वर्डस्वर्थ स्वभावतः काव्य के महत्व के समर्थक थे। काव्य और विज्ञान पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करते हुए उन्होंने कहा है कि काव्य समस्त ज्ञान का प्राण है, उसकी सूक्ष्म आत्मा है। वह ऐसी भाव दीप्त अभिव्यक्ति करता है जो विज्ञान मात्र का पोषक है। वस्तुतः काव्य और विज्ञान को एक दूसरे का विरोधी न मानकर पूरक मानना चाहिए। विज्ञान के समान काव्य भी सत्याश्रित है। हाँ, उसका सत्य ब्रह्म ज्ञान पर ही नहीं, आंतरिक ज्ञान पर भी आधारित होता है। विज्ञान का लक्ष्य काव्य के लक्ष्य से मूलतः भिन्न नहीं है। यदि वैज्ञानिक सत्य हमें केवल भौतिक लाभ पहुंचाता है, तो काव्यगत सत्य हमारे अस्तित्व से समवेत रहता है, कारण कि वह मनुष्य मनुष्य के संबंधों तक ही सीमित नहीं होता, मनुष्य और जगत के संबंधों को भी अपने में सन्निविष्ट किए होता है। विज्ञान से केवल वैज्ञानिक को आनंद होता है, या कुछ वैसे लोगों को जो विज्ञान से परिचित हैं। बृहत्तर जन समुदाय के लिए विज्ञान अबूझ पहेली है। इसके प्रतिकूल काव्य सर्वजनीन है, उससे सबों को आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि वह समस्त ज्ञान का प्राण है। काव्य का एक और प्रयोजन है, वह लोक मंगल का साधक है। काव्य रचना के पीछे वर्डस्वर्थ का अन्यतम प्रयोजन और आर्तों और विपन्नों को सांत्वना देना भी है। काव्य के प्रयोजन पर विचार करते हुए वर्डस्वर्थ का कहना है कि काव्य केवल आत्माभिव्यक्ति नहीं है। काव्य को केवल आत्माभिव्यक्ति मानने वाले अन्य स्वच्छंदतावादी कवियों से इस अंश में वर्डस्वर्थ का स्पष्ट भेद है। उनका कहना है कि काव्य में के महत्व या अमहत्व का निर्धारण इससे होता है कि पाठक पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आनंद तो उसका प्रमुख प्रयोजन है ही, किंतु वह आनंद ऐसा होना चाहिए जिसका नैतिक पक्ष सौंदर्य पक्ष की तुलना में कमजोर न पड़े। सौंदर्य पक्ष की निष्पत्ति कवि की भरिति भंगी उक्ति वैचित्र्य से होता है, जिसमें छंद लय अलंकार आदि का योगदान रहता है, पर नैतिक पक्ष का संबंध अंशतः भावों के परिष्करण से, अंशतः मनुष्य प्रकृति और मानव व्यापार के ज्ञान से, तथा अंशतः उन सभी वस्तुओं से है जिनसे जीवन समृद्धतर एवं पूर्णतर बनता है। इसलिए नैतिक पक्ष की उपेक्षा करने वाला काव्य काव्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता। पोएट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनर स्प्राइट ऑफ ऑल नॉलेज। इट इज द इम्पेंस्ड एक्सप्रेशन विच इज इन द काउंटेंस ऑफ ऑल साइंसेस, लेखक प्रोफेस, ग्रामीण जीवन को काव्य का विषय बनाने के संबंध में वर्ड्सवर्थ के अनेक कारण दिए गए हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण जीवन में मानव हृदय के भावों के उपचय की अनुकूल भूमि प्राप्त होती है। ख, हमारे प्रारंभिक भावों की सहज अवस्थिति सरलतर रूप में पाई जाती है। ग, प्रकृति के रमणीय तथा स्थायी रूपों के साथ मानवीय भावों का अधिक समंजन संभव होता है। घ, आचार व्यवहार ऐसे नैसर्गिक अनुभवों एवं पेशों या धंधों से उत्पन्न होते हैं जो आसानी से संवेद्य बन सकते हैं और स्थायी हो सकते हैं। निष्कर्ष यह कि ग्रामीण जीवन में मनुष्य के भाव सरल, निष्कपट और सच्चे होते हैं, क्योंकि वे प्रकृति के साथ निरंतर संपर्क से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनसे तादात्म्य सुगम होता है। जैसा आरंभ में संकेत किया गया है, अपनी यूरोपीय यात्रा के दौरान वर्ड्सवर्थ को फ्रांस के में एक वर्ष रहने का मौका मिला। फ्रांस की क्रांति अभी अभी घटित हुई थी, जिसमें समाज का शोषित निम्न वर्ग सदियों का बंधन तोड़कर स्वतंत्रता, समता तथा बंधुता का आदर्श स्थापित करने में सफल हुआ था और अभिजात वर्ग का प्रभाव अस्त हो रहा था। फ्रांसीसी क्रांति ने जीवन की परंपरागत मान्यताओं को खंडित कर मानव अधिकारों की प्रतिष्ठा की थी, किसी विशिष्ट मानव की नहीं बल्कि मानव मात्र की। काव्य का विषय अब न तो राजा था और न अभिजात वर्ग। कविता का प्रयोजन भी कृत्रिम शालीनता या शिष्टाचार का प्रदर्शन नहीं रह गया था। नागरिक जीवन और दरबारी चमक दमक हेय माने जाने लगे थे। इन भावों ने वर्ड्सवर्थ के भावुक हृदय पर गहरी छाप छोड़ी थी, जिसके परिणाम स्वरूप वे सामान्य ग्रामीण जीवन के चित्रण में उन्मुख हुए थे। नव अभिजातवादी आलोचक न तो वर्ड्सवर्थ की परंपरा विरुद्ध काव्य विषयक मान्यताओं से सहमत हो सके और न काव्य भाषा विषयक मान्यताओं से। उन्होंने जमकर दोनों का विरोध किया, खासकर काव्य भाषा विषयक मान्यताओं का। वर्ड्सवर्थ की संपूर्ण काव्य साधना का केंद्र बिंदु प्रकृति था। उनकी प्रकृति निर्जीव निष्पंद न होकर सजीव सक्रिय थी, साथ ही प्रेरक भी। इसलिए उन्होंने काव्य विषय भी उसी के लिए और काव्य भाषा का आदर्श भी। काव्य भाषा के संबंध में वर्ड्सवर्थ की सर्व प्रमुख मान्यता यह थी कि वह ग्रामीणों के दैनिक बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो सरलता, सच्चाई और भावों के संप्रेषण की शक्ति है, वह कृत्रिम भाषा में नहीं है। वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा विषयक मान्यताओं को ठीक से समझने के लिए उनकी पूर्ववर्ती परिस्थितियों की हल्की सी चर्चा आवश्यक है। प्रसिद्ध इतावली कवि दांते समय 1256 से 1321 ईस्वी ने कहा था कि काव्य में ग्राम्य भाषा का प्रयोग हेय है। उसके बाद से अनेक कवियों ने विभिन्न रूपों से इस बात का समर्थन किया। इस तरह से देखा जाए तो काव्य भाषा के संबंध में दो तरह के विचार प्रायः समांतर चलते रहे। एक में बोलचाल की भाषा का आग्रह रहा है और दूसरे में विशिष्ट या असाधारण भाषा का। प्राचीन आलोचकों के सिद्धांत विवेचन के क्रम में हम देख चुके हैं कि यूरोपीय साहित्य में भाषा पर काव्य शास्त्र और भाषा शास्त्र दोनों की दृष्टियों से विचार हुआ है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। 18वीं शताब्दी अर्थात नव अभिजात्यवादी युग में भाषा के दो प्रमुख रूप प्रचलित थे, निम्न और उच्च। दैनिक जीवन में व्यवहारित होने वाली भाषा को निम्न कहा जाता था और काव्य में उसका प्रयोग त्याज्य था, क्योंकि अपरिचित होने से उसमें वह प्रविष्णुत और तीव्रता नहीं थी जो रागात्मक भाषा में होनी चाहिए। इसके प्रतिकूल दैनिक व्यवहार से भिन्न किंचित अपरिचित अथवा अलंकृत भाषा के काव्य के उपयुक्त मानी जाती थी। यह उच्च भाषा क्रमशः इतनी कृत्रिम, बोझिल और आडंबरपूर्ण हो गई थी कि न तो वह बोधगम्य रह गई थी और न भावोद्दीपन में समर्थ। जो भाषा बोधगम्य ही न होगी वह भावोद्दीपन क्या करेगी। इसलिए वर्ड्सवर्थ ने इस भाषा के परित्याग और सरल भाषा के प्रयोग पर जोर दिया। काव्य भाषा के संबंध में वर्ड्सवर्थ ने निम्नलिखित मान्यताएं प्रस्तुत किए। पहला, काव्य में ग्रामीणों के दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तीसरा, प्राचीन कवियों का भावोद्बोध जितना सहज था उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है। इन मान्यताओं की व्याख्या अपेक्षित है। पहला, काव्य में दैनिक व्यवहार की भाषा के प्रयोग पर वर्ड्सवर्थ ने उसी कारण से बल दिया जिस कारण से ग्रामीण जीवन को काव्य का विषय बनाने पर उनके पात्रों का जो स्रोत है वही उनकी काव्य भाषा का भी है। वर्ड्सवर्थ का कहना है कि लिरिकल बैल्स में ग्रामीणों की भाषा इसलिए अपनाई गई है कि वे हर घड़ी प्रकृति की सर्वोत्तम वस्तुओं के संपर्क में रहते हैं और भाषा का उत्तमांश उनसे ही प्रसूत है। समाज में अपनी निम्न स्थिति के कारण साथ ही पारस्परिक व्यवहार के सीमित क्षेत्र के कारण सामाजिक वर्ग से मुक्त ग्रामीण जन अपने भावों और विचारों को सरल तथा स्वाभाविक ढंग से अभिव्यक्त करने के आदि हैं। वे बाहरी भावों से अछूते हैं, इसलिए केवल अपने व्यक्तिगत अनुभवों को ही संप्रेषित करते हैं। उनकी वाणी में जो सच्चाई, जो ईमानदारी और जो स्वाभाविकता है वह कृत्रिम भाषा में असंभव है। जैसे उनके भाव सरल हैं वैसे ही भाषा भी सरल है। विषय और अभिव्यक्ति का समन्वय आवश्यक भी है और वांछनीय भी। अतः उनकी भाषा काव्य भाषा का आदर्श प्रस्तुत करती है। उन कहने की आवश्यकता नहीं कि विशिष्ट और अलंकृत काव्य भाषा के अनुरागी ऐसी काव्य भाषा का समर्थन नहीं कर सकते। दूसरा, काव्य भाषा के संबंध में वर्ड्सवर्थ ने जोर देकर कहा कि अच्छे गद्य में तथा छंदोबद्ध में न तो कोई तात्विक भेद है और न हो सकता है। देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एजेंटियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेटेरिकल कंपोजिशन डैश प्रोफेस। इस मान्यता का प्रत्यक्ष और परंपरा से ही विरोध नहीं है, बल्कि स्वयं वर्ड्सवर्थ की अच्छी कविताएं भी इसका अपवाद है। वर्ड्सवर्थ का यह कहना है कि गद्य और काव्य में अंतर केवल छंद के कारण होता है अतिवादी दृष्टिकोण है। गद्य और काव्य का अंतर छंद के कारण ही नहीं बल्कि शब्द चयन और काव्य विन्यास आदि के कारण भी होता है। तीसरा, प्राचीन कवियों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वर्ड्सवर्थ यह प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं कि यदि कवि के हृदय में भाव का प्रबल उन्मेष है और विषय का उचित चयन हुआ है तो उसकी भाषा अनायास भव्य, सजीव और चित्र प्रधान होगी। उनका कहना है कि कृत्रिम भाषा उत्तरवर्ती उत्कृष्ट कवियों की देन है। सभी देशों के प्राचीन कवियों ने वास्तविक घटनाओं से उद्बुद्ध भावों का आधार लेकर काव्य रचना की। उन्होंने जो कुछ भी लिखा वह साधारण मनुष्यों के रूप में और बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से, चूंकि उनकी अनुभूति और भाव प्रबल थे इसलिए सहज ही उनकी भाषा प्रभावी और अलंकृत हो गई। अतः उन कवियों में जहाँ भी अलंकृत भाषा मिलता है वह उनके सच्चे भावोवेश से प्रेरित है। किंतु बाद में कवि यश प्रार्थी लोगों ने उस भाषा का प्रभाव देखकर वैसे भाव से अनुप्राणित हुए बिना भी वही प्रभाव उत्पन्न करना चाहा। फल या हुआ कि फल यह हुआ कि उन अलंकारों का केवल यांत्रिक प्रयोग हो पाया, कभी प्रयोग उचित भी हुआ पर अधिकतर ऐसे भावों तथा विचारों के लिए उनका प्रयोग होने लगा जिनके साथ उनका कोई स्वाभाविक संबंध नहीं था। इस प्रकार अनजाने एक ऐसी भाषा उत्पन्न हो गई जो किसी स्थिति में मनुष्यों की वास्तविक भाषा से तत्वतः भिन्न थी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हाथों में पड़ती हुई यह कृत्रिम भाषा क्रमशः जटिल और आडंबरपूर्ण होती गई और अतः अंत में आते आते उसकी भावोद्दीपन क्षमता बिल्कुल समाप्त हो गई। इसमें न तो सरसता रही न सहजता, वह वागाडंबर उत्पन्न करने का साधन मात्र रह गई। हिंदी रीति काव्य इसका अच्छा उदाहरण है। वर्ड स्वर्थ इस काव्य भाषा को त्याज्य बताकर उस काव्य भाषा को पुनर्जीवित करने का आग्रह करते हैं जो प्राचीन कवियों द्वारा अपनाई गई थी। वर्डस्वर्थ की भाषा संबंधी इन मान्यताओं का खंडन न केवल नव अभिजातवादियों ने किया बल्कि उनके अनन्य मित्र और सहयोगी कोलरिज ने भी किया, जो लिरिक बैल्स के सह लेखक थे। वर्डस्वर्थ की काव्य विषयक सभी मान्यताएं जिनमें काव्य भाषा संबंधी विचारणा भी सम्मिलित है उनके काव्य सर्जन के प्रयोग से उद्भूत है और उनकी कविताएं उनके काव्य सिद्धांतों के उदाहरण हैं। लिरिकल बैल्स के प्रथम संस्करण पर वर्डस्वर्थ का कथन ध्यातव्य है। यह संग्रह एक प्रयोग के रूप में प्रकाशित किया गया था। मैंने सोचा था कि इसका कुछ उपयोग यह पता लगाने में हो सकता है कि तीव्र अनुभूति की स्थिति में मनुष्य को स्वाभाविक भाषा को छंद में ढाल कर कहाँ तक वह आनंद और उतनी ही मात्रा में प्रदान किया जा सकता है जिसे कोई कवि समुचित रूप में प्रदान करना चाहता है। इस कथन के निम्नलिखित निष्कर्ष हैं। पहला, लिरिकल बैल्स का प्रयोग का प्रकाशन एक प्रयोग के रूप में था, निश्चित सिद्धांत के रूप में नहीं। दूसरा, इस प्रयोग का उद्देश्य यह पता लगाना था कि ग्रामीणों की बोलचाल की भाषा को छंद में डालकर उसके द्वारा तीव्र अनुभूति की अभिव्यक्ति कहाँ तक संभव है। तीसरा, और यदि संभव है तो क्या उससे वही और उतना ही आनंद प्रदान किया जा सकता है जो कवि को अभीष्ट है। इससे स्पष्ट है कि बोलचाल की ग्रामीण भाषा का प्रयोग वर्डस्वर्थ का अपरिवर्तनीय सिद्धांत नहीं है था और न सभी प्रकार की कविताओं में वे उसके व्यवहार के आग्रही थे। वे ग्रामीण भाषा की संप्रेषण क्षमता की केवल परीक्षा करना चाहते थे और इसी दृष्टि से लिरिकल बैलड्स में संकलित कविताओं की उन्होंने रचना की थी। वर्ड्सवर्थ ने बार बार द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन ए सेलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन द वेरी लैंग्वेज ऑफ मैन आदि का प्रयोग किया है। इन संदर्भों में मेन का अर्थ ग्रामीण है, वे नागरिक की या जन साधारण की बात नहीं करते, केवल ग्रामीण की बात करते हैं। रियल रियली वेरी का भी अभिप्राय यह है कि बिल्कुल वह भाषा जिसे ग्रामीण दैनिक व्यवहार में लाते हैं। काव्य भाषा के विचार के प्रसंग में वर्ड्सवर्थ ने कहा कि गद्य और छंदोबद्ध रचना के बीच न तो कोई तात्विक अंतर है और न हो सकता है। यही कथन सबसे अधिक विवाद का विषय बना था। वर्ड्सवर्थ की इस मान्यता का आधार लौकिक व्यवहार है जिसमें स्वाभाविक जीवन बिताने वाले ग्रामीण सहज संप्रेषण के लिए बोलचाल के गद्य का प्रयोग करते हैं और गद्य में वे ही अपनी सारी बातें यहाँ तक कि तीव्र भाव और अनुभूतियाँ भी बखूबी अभिव्यक्त करते हैं। इसका अर्थ है कि ग्रामीणों के सरल अकृत्रिम गद्य में भी अभिव्यक्ति की पूर्ण क्षमता वर्तमान है। फिर फिर उसका प्रयोग पद में क्यों नहीं हो सकता। ध्यान में रखने की बात है कि वर्ड्सवर्थ ने इस प्रसंग में कारण शब्द का नहीं छंदोबद्ध रचना अर्थात पद का उल्लेख किया है। ग्रामीण भाषा में छंदोबद्ध रचना तो हो ही सकती है, रही बात काव्य की तो वर्ड्सवर्थ का कहना है कि ग्रामीण भाषा काव्य के लिए भी उपयुक्त है, खासकर ऐसे काव्य के लिए जिसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण हो। इफ वाज पब्लिश्ड इज एन एक्सपेरिमेंट विच आई होप माइट बी ऑफ सम यूज टू एज सर्टेन हाउ फार बाय फिटिंग टू मेट्रिकल अरेंजमेंट ए सेलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मेन इन ए स्टेट ऑफ डिवाइड सेनेसेशन दैट सॉर्ट ऑफ प्रेजर एंड दैट क्वांटिटी ऑफ प्रेजर मे बी इम्पोर्टेड विच ए पोएट मे रेसेनली इंडिवर टू इम्पार्ट दैस प्रोफेस। वर्ड्सवर्थ के कथन का अभिप्राय यह है कि अभिव्यक्ति की क्षमता गद्य में भी वैसी ही है जैसी पद्य में। दोनों में अंतर इतना है कि पद्य में छंद आरोपित रहता है किंतु गद्य में नहीं, इसलिए दोनों में जो अंतर है वह छंद का है, भाषा का नहीं। भाषा तो गद्य और पद्य की एक ही है। वर्ड्सवर्थ की काव्य विषयक मान्यताओं से अधिक काव्य भाषा विषयक मान्यताओं की आलोचना हुई है। आलोचकों में कोलरिज अग्रगण्य हैं। उन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरिया के 17 से 20 तथा तक 4 अध्यायों में वर्ड्सवर्थ की एक एक मान्यता की जोरदार आलोचना की है। पहला, जैसा पीछे कहा गया है, वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा विषयक मान्यता एक तो प्रयोग के रूप में थी, दूसरे एक खास तरह के काव्य ग्रामीण जीवन से संबद्ध के लिए। सभी प्रकार के काव्य के लिए उन्होंने ग्रामीण भाषा का न तो स्वयं व्यवहार किया है और न करने को कहा है। कोलरिज इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं, वे काव्य मात्र की भाषा का प्रश्न उठाते हैं, जबकि वर्ड्सवर्थ ने एक विशेष प्रकार के काव्य के प्रसंग में ही ग्रामीण भाषा की वकालत की है। अतः कोलरिज की आलोचना प्रसंगापेत है। कोलरिज का तर्क यह है कि काव्य भाषा के प्रसंग में प्रमुख विचारणीय प्रश्न यह नहीं है कि काव्य भाषा का स्वरूप क्या हो, बल्कि यह कि भावों और अनुभूतियों के संप्रेषण में वह कहाँ तक समर्थ है। यह ग्रामीणों की बोलचाल की भाषा है या उससे भिन्न, यह प्रश्न गौण है। देखना यह है कि वह कवि के भाव और अनुभूतियों के पूर्ण तथा समुचित संप्रेषण में सफल हुई है या नहीं। ग्रामीण भाषा में एक कठिनाई यह है कि उसकी शब्दावली इतनी अपर्याप्त और काम चलाऊ है कि उससे व्यापक सूक्ष्म अनेकविध अनुभूतियों का संप्रेषण संभव नहीं है। वह अधिक से अधिक कुछ परिमित वस्तुओं या कार्यों का ही वर्णन कर सकती है जो ग्रामीण मनुष्यों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षित है, पर प्रकृति की इयत्तता तो यह नहीं है। उसके अनंत रूप हैं जिनकी अभिव्यक्ति ग्रामीण भाषा में संभव नहीं है। कोलरिज ने जाने अनजाने वर्ड्सवर्थ के अभिप्राय से अलग हटकर आलोचना की है। वर्ड्सवर्थ भी भाव और भाषा के सामंजस्य के क्रम आग्रही नहीं है। उन्होंने प्रीफ्रेस में इसकी कई बार चर्चा भी की है। ग्रामीण भाषा संबंधी मान्यता, उनकी उपर्युक्त मान्यता केवल लिरिकल बैलड्स में संकलित कविताओं के संदर्भ में ही है। उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा कि कवि को सदा ग्रामीण भाषा का ही व्यवहार करना चाहिए। प्रीफेस में अनेकत्र यथासंभव कहकर उन्होंने ग्रामीण भाषा की सीमित उपादेयता को ही संकेतित किया है। दूसरा, वर्ड्सवर्थ के मनुष्यों की वास्तविक भाषा के चयन पर कोलरिज की आपत्ति है कि प्रत्येक मनुष्य की भाषा उसके ज्ञान के विस्तार, क्षमता की क्रियाशीलता एवं संवेदनाओं की क्षिप्रता या गंभीरता के अनुसार भिन्न हुआ करती है। शिक्षित मनुष्य की भाषा अशिक्षित ग्रामीण की भाषा से भिन्न होती है, पर इसका यह अर्थ कहाँ है कि उसकी भाषा अवास्तविक है? शिक्षित के लिए उसकी भाषा उतनी ही वास्तविक है जितनी अशिक्षित ग्रामीण के लिए उसकी भाषा। आगे चलकर कोलरिज कहते हैं कि मनुष्य की भाषा तीन कारणों से नियंत्रित होती है। वे हैं क, मनुष्य की वैयक्तिक विशेषताएं, ख, समाज या वर्ग की विशेषताएं, और ग, शब्दों और मुहावरों की अंतर्निहित विशेषताएं। इन्हीं तीन कारणों से प्रत्येक मनुष्य की भाषा में भिन्नता आती है। कोलरिज का भाषा संबंधी उपर्युक्त विवेचन सर्वथा संगत है, किंतु स्मरण रखना चाहिए कि वर्ड्सवर्थ इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में भाषा पर विचार कर ही नहीं सकते हैं। वे तो सीमित परिप्रेक्ष्य में एक सीमित लक्ष्य की दृष्टि में रख कर अपनी बात कर रहे हैं, अतः उनका कथन एकांगी होते हुए भी असंगत नहीं है। तीसरा, वर्ड्सवर्थ ने ग्रामीण भाषा का समर्थन करते हुए एक तर्क यह भी दिया है कि कवि उन दोषों को दूर करके ही ग्रामीण भाषा काम में लाए जाएंगे जो अरुचि या जुगुप्सा उत्पन्न करने वाले हैं। काव्य में परिष्कृत और अलंकृत भाषा के प्रयोग के पक्षधर ग्रामीण भाषा को इसलिए अनुपयुक्त मानते हैं कि उसमें ग्राम्यता आदि दोष रहते हैं जो अरुचि या जुगुप्सा उत्पन्न करते हैं। उनका निराकरण हो जाने के बाद ग्रामीण भाषा में आपत्ति की कोई बात रहेगी ही नहीं। इस पर कोलरिज का प्रत्युत्तर है कि जब दोषों का निराकरण हो ही गया तो वह भाषा ग्रामीण रही कहाँ? ग्रामीण तो वह कभी तक है जब तक उसका परिष्कार नहीं हुआ है। क्षेत्रीयता, ग्राम्यता आदि दोषों के निराकरण के बाद तो वह काव्य भाषा ही बन गई। फिर तो उसे ग्रामीण कहना ही आयुक्त वर्ड्स है। वर्ड्सवर्थ शायद इसका यह समाधान करते हैं कि उन्होंने केवल ग्रामीण शब्दों के चयन की बात कही है। यह तो कहीं न नहीं कहा कि सदोष भी ग्रामीण भाषा काव्योपयोगी होती है, और परिष्कार हो जाने पर भी शब्दावली तो ग्रामीण ही रहती है, इसलिए उनका कथन खंडित नहीं होता। चौथा, वर्ड्सवर्थ का तीव्र अनुभूति की दशा वाला काव्य खंड भी कोलरिज की आलोचना से नहीं बचा है। उनका कहना है कि वह इस काव्य खंड को जोड़ देने में भी बात कुछ बनती नहीं। प्रबल भावों से अभिभूत भी मनुष्य नए शब्दों या काव्य खंडों का आविष्कार नहीं करता, बल्कि पहले से मन में संचित शब्द भंडार से ही काम लेता है। भाव का उद्दीपन केवल उस शब्द भंडार को अधिक गतिशील कर देता है। भाव की उष्मा विचारों या बिंबों में चाहे जो भी अभिनव संबंध स्थापित करे, या सत्य अथवा अनुभूति का जो भी साधारणीकरण करे, उसके संप्रेषक शब्द तो बोल चाल में पहले से ही विद्यमान रहते हैं। असाधारण उत्तेजना से वे केवल समुदित हो जाते हैं। पर कोलरिज का यह प्रश्न और उत्तर दोनों अस्थानस्थ हैं। वर्ड्सवर्थ ने यह कहा ही नहीं है कि भाव की उत्तेजना या तीव्र अनुभूति शब्द भंडार को प्रभावित करती है। उनका उतना ही कहना है कि अनुभूति की तीव्रता की दशा में प्रयुक्त शब्द इतने शक्तिशाली हैं और इतने प्रभावकारी हो जाते हैं कि अनायास काव्य गुण से संपन्न हो जाते हैं। काव्य में प्रयुक्त शब्द अलौकिक नहीं होते, वे उन्हीं शब्दों में गृहित होते हैं जो सामान्य बोलचाल के काम में आते हैं, किंतु कवि के भाव की तीव्रता के संवहन की जो प्रक्रिया में कुछ ऐसे सबल व्यंजक एवं विच्छित्त विष्ट हो जाते हैं जो सामान्य स्थिति में संभव नहीं है। पांचवा, वर्ड स्वर्थ के गद्य और पद्य की भाषा की अभिन्नता के सिद्धांत पर कोलरिज ने काफी गंभीरता से विचार किया है। वर्ड स्वर्थ द्वारा प्रयुक्त एसेंशियल शब्द का विश्लेषण करते हुए उन्होंने निष्कर्ष रूप में कहा है कि मैं अपने प्रमाण में प्रत्येक देश और प्रत्येक युग के सर्वोत्कृष्ट कवियों के प्रयोग की ओर ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि अनिवार्य एसेंशियल शब्द के प्रत्येक अर्थ में गद्य और छंदोबद्ध रचना की भाषा में सचमुच अनिवार्य भेद हो सकता है और होना चाहिए। कोलरिज अपने मत के समर्थन में आगे कहते हैं कि किसी रचना में शब्दों या शब्द क्रमों की उपयुक्तता के प्रश्न पर निरपेक्ष विचार असंगत होगा, क्योंकि शब्द क्रम गद्य में उपयुक्त हो सकता है, पद्य में नहीं। इस प्रकार वह पद्य में उपयुक्त हो सकता है, गद्य में नहीं। हमें इस सामान्य और निरपेक्ष विचार से हटकर विशिष्ट संदर्भ में देखना चाहिए कि किसी शब्द या शब्द क्रम का प्रयोग कहाँ तक उचित हुआ है, और तब हम पाएंगे कि गद्य में जो उचित है वह पद्य में नहीं है और पद्य में जो उचित है वह गद्य में नहीं है। इसलिए गद्य और पद्य की भाषा में अभेद मानना किसी प्रकार स्वीकार्य नहीं है। वर्ड स्वर्थ के भाषा संबंधी विवेचन में यही तर्क सबसे कमजोर है और इसका समाधान सामान्यतः कठिन है, किंतु वर्ड स्वर्थ का समर्थक यहाँ भी कह सकता है कि जब वर्ड स्वर्थ ने गद्य पद्य की भाषा में अभेद की बात कही तो उनकी दृष्टि केवल शब्द भंडार पर थी, भरिति भंगी या काव्य विन्यास पर नहीं। जहाँ तक शब्द भंडार की बात है उसमें गद्य पद्य का तात्विक भेद कहाँ होता है, बहुत दूर तक वे ही शब्द गद्य और पद्य दोनों में प्रयुक्त होते हैं। अंतर तो है केवल उनके प्रयोग की प्रणाली का। हाँ, पद्य में छंद और लय के बंधन के कारण शब्द विन्यास के क्रम में वह स्वच्छंदता नहीं रहती जो गद्य में रहती है। जैसा ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि वर्ड स्वर्थ की मान्यताओं के खंडन में आलोचकों ने तथ्य से अधिक प्रौढ़ी प्रदर्शन की तथा बाल की खाल निकालने की प्रवृत्ति का परिचय दिया है। जिन लोगों ने बाणभट्ट के गद्य का आस्वादन किया है वे वर्ड स्वर्थ की इस मान्यता से असहमत नहीं हो सकते कि गद्य और छंदोबद्ध रचना की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। संस्कृत में एकमात्र कालिदास ही काव्योचित भाषा में के प्रयोग में बाणभट्ट के गद्य का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए संस्कृत में यह उक्ति चल पड़ी है कि गद्यम कविनाम निकर्षा वदन्ति, गद्य कवियों की कसौटी है। यह भी भूलना नहीं चाहिए कि वर्ड्सवर्थ में ने केवल गद्य ही नहीं कहा है बल्कि उत्तम गद्य गुड प्रोज कहा है। हिंदी में ही साधना आदि गद्य गीतों की भाषा काव्य की भाषा से अधिक किसी माने में भिन्न नहीं है। बोलचाल की भाषा में भाव और अनुभूति के काव्यात्मक संप्रेषण की बात भी यदि अतिवादी सीमा तक नहीं खींची जाए तो वर्ड्सवर्थ की वह मान्यता भी आपत्तिजनक नहीं है। उदाहरण, निराला की भिक्षुक शीर्षक कविता का यह छंद लें, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ हिलाकर है दोनों एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर धाने को भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं जो काव्यात्मक वैशिष्ट से समन्वित कहा जा सके सके बल्कि टूक लकुटिया मुट्ठी दाना झोली आदि शब्द ग्रामीण ही हैं। इस कविता में ये कितने व्यंजक हैं, इनके बदले गुरु गंभीर तत्सम शब्द कविता का सारा सौंदर्य समाप्त कर देंगे। वस्तुतः शब्द का अपना कोई खासा महत्व नहीं होता, वक्ता श्रोता विषय प्रकरण आदि से उसमें अर्थवत्ता आती है और उसकी छाया निखरती है। इसलिए कृत्रिम अलंकृत क्लिष्ट भाषा को ही काव्य भाषा मानना ठीक नहीं। वर्डस्वर्थ के कहने का तात्पर्य इतना ही है। वर्डस्वर्थ की तीसरी मान्यता भी गलत नहीं है। काव्य के प्रारंभिक युग में कवि के भाव की सरल स्वाभाविक होते हुए भी होते थे और अभिव्यक्ति भी अव्याज मनोहर। भारत में आदि कवि वाल्मीकि की भाषा कितनी सरल स्वच्छ और प्रसन्न है। कालिदास की भी भाषा कितनी पारदर्शी है। वही स्थिति जुरानी कवि होमर की है। काव्य भाषा में क्रमशः अलंकरण और कृत्रिमता बढ़ती गई और जो कवि जितना प्रतिभा दरिद्र हुआ है उसकी भाषा सहजता से उतनी ही दूर हटी है। उसने भाव के खोखलेपन को भाषा के आडंबर से वैसे ही भरने की चेष्टा की है जैसे कोई नारी सौंदर्य की कमी को अलंकारों के आवरण में छिपाने की कोशिश करे। छंद काव्यानंद को बढ़ाने का साधन है किंतु जब वर्ड स्वर्थ उसे अध्यारोपित चारुत्व कहते हैं तो उसका महत्व कुछ कम होता दिखता है। ऐसा संभवतः वे इसलिए कहते हैं कि शब्द छंद शब्द चयन या वाक्य विन्यास जैसी अन्य कृत्रिम विशेषताओं का पथ प्रशस्त करता है। चूंकि वर्डस्वर्थ स्वाभाविकता के आग्रही हैं इसलिए जहां भी उन्हें कृत्रिमता की थोड़ी सी भी संभावना दिखाई पड़ती है वहां उससे बचने की कोशिश करने लगते हैं। छंद के अनुरोध से किसी शब्द के अनेक पर्याय में से उस किसी स्थल विशेष पर कोई एक ही शब्द ठीक बैठता है। यह पर्याय सरल नहीं भी हो सकता है पर उसे न रखे तो छंदो भंग हो जाएगा। इसलिए सरलता के साथ से के दृष्टि से बहुत उपयुक्त नहीं होने पर भी उसका प्रयोग करना पड़ता है। यह स्थिति वर्ड स्वर्थ की अभिमत नहीं है। हालांकि वे मानते हैं कि छंद मन को चेतना के एक नए स्तर पर उठाता है और भावों का प्रगनन कर तथा नियंत्रण भी करता है पर वे इस धारणा से भी मुक्त नहीं हो पाते कि छंद कुछ अंश तक भाषा की असलियत से उसे अलग कर पूरी रचना को अवास्तविक सत्ता की अर्ध चेतना से आवृत कर देता है। इसलिए काव्य के पाठक को निरंतर यह अस्पष्ट बोध होता रहता है कि जो भाषा उसके सामने है वह जीवन के निकट होते हैं होते हुए भी छंद के कारण जीवन से काफी दूर है। वस्तुतः छंद के महत्व को वर्डस्वर्थ उन्मुक्त भाव से स्वीकार नहीं कर पाए हैं। परंपरा और व्यक्तिगत धारणा का द्वंद न तो उन्हें खुलकर छंद की उपादेयता स्वीकार करने देता है और न अस्वीकार। इसलिए कहीं कहीं विवेचन है में विसंगतियां भी दृष्टिगोचर होती हैं। उदाहरणार्थ भूमिका में एक स्थल पर वे कहते हैं कि काव्य का आनंद बहुत थोड़ी मात्र में ही छंद पर निर्भर करता है। इसलिए छंद में तब तक लिखना समीचीन नहीं है जब तक छंद की सामान्यतः सहवर्ती अन्य कृत्रिम विशेषताएं भी उसके साथ शैली में न हो। पर थोड़ा ही आगे चलकर कहते हैं कि भावों आचारों अथवा चरित्रों के वर्णन यदि गद्य और पद्य में एक जैसे सफल सुंदर बन पड़े हैं तो दोनों में जहां गद्य वाला एक बार पढ़ा जाएगा वहां पद्य वाला 100 बार। ये दोनों कथन परस्पर विरोधी है। आखिर पद्य वाला वर्णन 100 बार क्यों पढ़ा जाएगा? छंद ही के कारण तो। ऐसी स्थिति में यह कहना कि काव्य का आनंद बहुत थोड़ी मात्रा में ही छंद पर निर्भर करता है वद तो व्याघात हो जाता है। मूल्यांकन: पहला, वर्डस्वर्थ न तो आलोचक थे और न आलोचना के लिए उन्होंने आलोचना लिखी। उनके लेख और कोलरिज के संयुक्त लेखत्व में लिरिकल बैलड्स में संग्रहित रचनाएं उद्देश्य विशेष को ध्यान में रखकर एक अभिनव प्रयोग की दृष्टि से लिखी गई थी। प्रथम 1798 संस्करण की भूमिका अत्यंत संक्षिप्त थी, किंतु बैलड्स के प्रकाशन के बाद समीक्षकों आलोचकों के आक्रमण के निराकरण के लिए तथा अपने दृष्टिकोण के विशदन के लिए वर्ड्सवर्थ को आलोचना लिखनी पड़ी, जो बैलड्स के द्वितीय 1800 ईस्वी संस्करण के साथ प्रकाशित हुई। इसमें मुख्यतः तीन विषयों का समावेश था। क 18वीं सदी की रूढ़ कृत्रिम अलंकृत काव्य भाषा का खंडन, ख गद्य और पद्य की भाषा का अभेद, ग काव्य भाषा और सामान्य ग्रामीण भाषा अर्थात समाज के निम्न मध्य वर्ग की भाषा की एकात्मता। प्रकार अंतर से ये तीनों विषय प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म के ही रूप भेद हैं। वर्ड स्वर्थ कृत्रिमता के विरोधी और नैसर्गिकता के परिशंसक थे। बाह्य प्रकृति की सुषमा भी उन्हें इसलिए प्रतिकर थी। ये तीनों चीजें 18वीं शताब्दी के नव अभिजात्यवाद या नव शास्त्रवाद नियो क्लासिज्म के विरोध के रूप में उभरी थी। काव्य में बोलचाल की अर्थात सामान्य व्यवहार की भाषा के प्रयोग को लेकर कवियों और आलोचकों में प्रायः मतभेद पाया जाता है। जॉन डन समय 1571 से 1631, जॉन ड्राइडेन समय 1631 से 1700 और 20वीं शताब्दी में इलियट समय 1888 से 1965 और एजरा पाउंड 1885 से 1772 1972 काव्य में बोलचाल की भाषा के ही समर्थक रहे हैं। काव्य भाषा विषयक यह मतभेद रुचि भेद के कारण रहा है और इसका कोई अंतिम समाधान संभव भी नहीं है। वर्ड स्वर्थ का कथन एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की प्रतिक्रिया थी। अपनी पूर्ववर्ती काव्य भाषा को उन्होंने दूषित, विशियस, विकृत, डिस्टॉर्टेड, सत्याभासी, ग्लोसी, भावहीन, अनफीलिंग आदि कहा और अपनी भाषा को स्वाभाविक। यह उस ऐतिहासिक चक्र का आवर्तन है जिसमें स्वाभाविकता और कृत्रिमता का अलंकरण और अनलंकरण का क्रम सदा चलता रहता है, जो स्वयं वर्डस्वर्थ की मान्यताओं में उत्तरोत्तर पर्याप्त परिवर्तन हुए और आगे चलकर सामान्य भाषा के प्रयोग का आग्रह एक प्रकार से उन्होंने छोड़ दिया। किंतु विडंबना यह रही है कि उनकी मूल घोषणा तो लोगों ने पकड़ रखा और बाद के परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दिया। जैसा हमने देखा है कि बोलचाल की भाषा की बात उन्हें केवल एक प्रयोग के रूप में उठाई थी। बाद में उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि बैलड्स के अधिकतर रचनाओं में उनका कथन अंशतः ही चरितार्थ है। काव्य भाषा के संबंध में उनका एक स्पष्ट प्रस्ताव यह भी था कि उसमें जीवंत संवेदन की स्थिति स्टेट ऑफ विवाइड सेंटेंस होनी चाहिए। दूसरा, नव अभिजात्यवादी मान्यताओं के प्रतिकूल वर्ड स्वर्थ ने एक और मान्यता उपस्थापित की। नव अभिजात्यवाद काव्य को सचेत तथा आयास सिद्ध व्यापार मानता था। वर्ड स्वर्थ ने काव्य को प्रबल भावों का सहज उच्छलन कहकर उसकी अनायासता प्रतिपादित की। जहाँ तक सचेतता का प्रश्न है, उसका खंडन वर्ड स्वर्थ ने नहीं किया। यह इस बात से भी प्रमाणित है कि वे अपनी रचनाओं को बार बार दोहराते हैं और उनमें संशोधन परिमार्जन करते हुए उनका कहना था कि अपनी प्रथम अभिव्यंजना को मैं प्रायः घृणास्पद मानता हूँ। अधिकतर यही सत्य है कि द्वितीय विचारों के समान द्वितीय शब्द भी उत्तम होते हैं। उनके सहज उच्छलन का तात्पर्य इतना है कि कृत्रिम और अत्यलंकृत काव्य हे है। तीसरा, वर्ण स्वर्थ काव्य के स्वदेश्यता के पक्षधर हैं। उनके अनुसार काव्य मनुष्य के मानसिक नैतिक स्वास्थ्य का तथा सुख का साधन है। काव्य का दूसरा उद्देश्य है मनुष्य को झटका देकर रागात्मक उदासीनता से जगाना और संसार की वास्तविकता तथा रहस्य की ओर उन्मुख करना, समीचीन भाव एवं बोध को उद्दीप्त करना। कवि को भाव और ज्ञान के द्वारा मानव समाज के विराट साम्राज्य को एक बंधन में बांधना चाहिए। पाठकों में विनम्रता तथा मानवीयता का संचार करना चाहिए, जिससे वे शुद्ध एवं परिष्कृत हो सके। यह विरेचन सिद्धांत की ही एक अभिनव व्याख्या है। अरस्तु ने दुखांतक के द्वारा करुणा और भय के विरेचन की बात कही थी। वर्डस्वर्थ ने काव्य के द्वारा कृत्रिम और दूषित भाव के विरेचन की बात कही। मनुष्य कृत्रिम संस्कार तथा सामाजिक दंभ की संकीर्णताओं से घृणा तथा द्वेष से ग्रस्त हैं। काव्य इन संकीर्णताओं को दूर कर मानवीय संवेदन का विस्तार करता है और इस प्रकार मनुष्य के अंदर आनंद, गौरव एवं कल्याण का पथ प्रशस्त करता है। चौथा, आरंभ में वर्डस्वर्थ ने काव्य का महत्व भाव की दृष्टि से आंका था, किंतु बाद में उपदेश का महत्व भी स्वीकार किया। उन्होंने जहाँ तक कहा कि प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है, मैं चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊं या कुछ नहीं। काव्य का उपयोग मनुष्य के अस्तित्व के ढांचे में सुधार के लिए होना चाहिए। वे काव्य में आनंद के साथ नैतिकता का समन्वय आवश्यक मानते हैं। कुछ आलोचक के अनुसार वर्डस्वर्थ की भूमिका एक अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख है। वर्डस्वर्थ को जो सुधार अभिमत थे, उनमें उससे प्रचुर सहायता मिली। काव्य के स्वरूप, विषय, प्रयोजन तथा काव्य प्रतिक्रिया के संबंध में भूमिका ने बहुमूल्य एवं नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। सबके ऊपर इसकी गंभीरता तथा आंतरिक अनुभूति की पकड़ ने ऐसी चर्चाओं का द्वार खोला। ऊपर की समीक्षा से स्पष्ट है कि यद्यपि वर्डस्वर्थ की आलोचना आकार में बड़ी रुचि नहीं है, भूमिका केवल 30 पृष्ठों की है। काव्य में अधिकतर पक्षों का उसमें निरूपण तो दूर निर्देश तक नहीं है, विवेचन की सूक्ष्मता की भी कमी है। फिर भी उसमें जो संकेत है अथवा एक महाकवि की जो व्यक्तिगत अंतर्दृष्टियां हैं, उनके कारण उसका महत्व आज भी अक्षुण है। एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर, आई विश आइदर टू बी कंसिडर्ड एज ए टीचर आर एज नथिंग प्रेफेस हो। विलियम वर्ड्सवर्थ का अध्याय समाप्त।